एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने सोचने के तरीके को ही बदल दिया। जॉन लॉक की एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग।
ये किताब एक ऐसा बुनियादी सवाल उठाती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं। आखिर हम जानते कैसे हैं? हमारे दिमाग में ये सारे विचार, ये समझ, ये ज्ञान, ये आता कहाँ से है?
हाँ, और ये सवाल आज की दुनिया में, आप देखिए, जहाँ जानकारी का इतना सैलाब है और सच झूठ में फर्क करना इतना मुश्किल हो गया है, ये और भी ज्यादा मायने रखता है।
सही बात है।
लोक की ये पड़ताल हमें अपनी ही सोच की मशीनरी को एक तरह से समझने का एक औजार देती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हम समझते कैसे हैं।
हाँ बिल्कुल, इस सफर पर निकलने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि जॉन लॉक थे कौन। क्या वो बस कमरे में बैठकर सोचने वाले दार्शनिक ही थे या कुछ और भी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉन लॉक 1632 से 1704 तक इंग्लैंड के एक बड़े ही दिलचस्प इंसान थे। वो सिर्फ दार्शनिक ही नहीं थे बल्कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े एक प्रशिक्षित डॉक्टर भी थे।
अच्छा, डॉक्टर भी?
हाँ, और राजनीति में भी उनका काफी दखल था। उन्होंने चिकित्सा और उस समय के विज्ञान, जिसे प्राकृतिक दर्शन कहते थे, दोनों की पढ़ाई की थी।
अच्छा, डॉक्टर और वैज्ञानिक सोच वाले, तो शायद शायद इसीलिए उन्होंने दिमाग और ज्ञान को समझने के लिए एक व्यवस्थित, सबूतों पर आधारित तरीका अपनाया होगा, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा हो।
हाँ बिल्कुल, ये उनके नज़रिए की खासियत है। वो रॉबर्ट बॉयल और आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों से बहुत प्रभावित थे, जो प्रयोग और अवलोकन पर जोर देते थे। लॉक का मानना था कि ज्ञान, कि सारा ज्ञान जो है वो हवा में से नहीं आता, बल्कि दुनिया को देखने, सुनने, महसूस करने से आता है, अनुभव से।
अनुभव से।
हाँ, साथ ही एक बड़े राजनेता थे, अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी। उनके सलाहकार के तौर पर उन्होंने काम किया और राजनीतिक उथल पुथल के कारण कुछ समय देश से बाहर भी रहे। तो इन अनुभवों ने उन्हें प्रैक्टिकल दुनिया की अच्छी समझ दी कि लोग कैसे यकीन करते हैं, अधिकार को कैसे देखते हैं और अपनी राय वो कैसे बनाते हैं।
यानी चिकित्सा, विज्ञान, राजनीति और दर्शन, इन सब का असर उनके विचारों पर पड़ा होगा। ये अनोखा मिश्रण ही उन्हें इंसानी समझ जैसे मुश्किल विषय पर लिखने के लिए तैयार करता है। तो ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है? क्या है इसका निचोड़?
देखिए, लॉक का सबसे, आप कह सकते हैं, धमाकेदार विचार ये था कि हमारा मन जन्म के समय एक कोरी स्लेट, टेबुला रासा, या आप कह लीजिए बिल्कुल सफ़ेद कागज जैसा होता है।
कोरी स्लेट
मतलब उस पे पैदाइशी कुछ भी लिखा नहीं होता, कोई पहले से बने बनाए विचार नहीं होते, शून्य।
ये तो उस जमाने की सोच पर सीधा हमला था। तब तो बड़े बड़े दार्शनिक ये मानते थे ना कि ईश्वर का विचार या सही गलत की समझ जैसी कुछ बातें हमारे अंदर जन्म से ही होती हैं।
बिल्कुल, लॉक ने रेने दुकार्त जैसे विचारकों के जन्मजात विचारों, यानी इननेट आइडियाज, के सिद्धांत को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा, हमारे दिमाग में जो कुछ भी है वो सिर्फ दो रास्तों से आता है।
दो रास्ते?
जी।
कौन से?
पहला रास्ता है संवेदन,
सेंसेशन।
हमारी पांच इंद्रियां हैं ना,
आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा।
हाँ, ये बाहरी दुनिया से जो जानकारी लाती हैं, जैसे किसी चीज़ का रंग, आवाज़, स्वाद, वो गर्म है या ठंडा, ये सब संवेदन है।
ओके, और दूसरा?
दूसरा रास्ता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन, हमारा मन खुद अपने अंदर क्या कर रहा है उसे देखना और समझना, जैसे सोचना, शक करना, याद करना, विश्वास करना।
अच्छा, मन की अपनी क्रियाएं।
हाँ, बस यही दो स्रोत हैं हमारे सारे ज्ञान के, संवेदन और परावर्तन।
तो ये किताब एक तरह से हमारे मन की कहानी बताती है कि कैसे वो इन आसान से अनुभवों से, इन कच्ची ईंटों से धीरे धीरे समझ की पूरी इमारत खड़ी करता है। जटिल सोच, सिद्धांत, यहाँ तक कि ये जो मैं हूँ का एहसास है, ये भी।
एकदम सही कहा। लॉक बड़े सलीके से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे मन इन बिल्कुल साधारण बुनियादी विचारों, सिंपल आइडियाज को लेता है,
सिंपल आइडियाज,
हाँ, और फिर उन्हें जोड़ता है, उनकी तुलना करता है, उनमें से आम चीजें छांटता है, जिसे वो अमूर्तन या अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, और इस तरह ज्यादा जटिल विचार बनाता है, जैसे इंसाफ का विचार, दोस्ती का विचार या गणित के सिद्धांत।
तो ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि मन कैसे काम करता है, बल्कि ये भी कि हम क्या जान सकते हैं और क्या नहीं, हमारी जानकारी की हद कहाँ तक है, ये भी बताती है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। किताब की पहली बड़ी बात आपने बताई, जन्मजात विचारों का खंडन। लॉक ने कैसे साबित किया कि हमारे दिमाग में पहले से कुछ नहीं होता? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या वाकई कोई रुझान, कोई प्रवृत्ति भी नहीं होती जन्म से?
देखिए, लॉक का मुख्य तर्क था, अगर कोई विचार सचमुच जन्मजात होता तो वो दुनिया के हर इंसान में पाया जाना चाहिए, है ना? हर उम्र में, हर संस्कृति में।
हाँ, लॉजिकल तो है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्होंने कहा, छोटे बच्चों को देखिए, वो नैतिकता या तर्क के बड़े बड़े सिद्धांत तब तक नहीं समझते जब तक उन्हें सिखाया ना जाए। यहां तक कि जो है वो है जैसा सीधा तर्क भी उन्हें समझाना पड़ता है शुरू में।
अच्छा।
उन्होंने मानसिक रूप से अक्षम लोगों का उदाहरण दिया, और सबसे बढ़कर उन्होंने दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों का हवाला दिया, जहां नैतिकता के नियम बहुत अलग थे या ईश्वर की धारणाएं बिल्कुल भिन्न थी या कुछ संस्कृतियों में थी ही नहीं। तो उनका सवाल था कि अगर ये विचार जन्मजात होते तो ऐसा फर्क क्यों होता? सब में एक जैसे होने चाहिए थे।
हाँ, ये तर्क तो सोचने पर मजबूर करता है वाकई। तो अगर विचार जन्मजात नहीं है तो फिर आते कहाँ से हैं? यहीं पर वो सफेद कागज वाली बात आती है पुस्तक दो में।
बिल्कुल, पुस्तक दो में लॉक अपना सिद्धांत बनाते हैं। सारा कच्चा माल अनुभव से आता है, बाहरी दुनिया, संवेदन या मन की भीतरी क्रियाएं, परावर्तन, ये हमें देते हैं सरल विचार।
सरल विचार?
हाँ, ये ज्ञान के सबसे छोटे कण हैं जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे नीला रंग देखना, गर्म महसूस करना, मीठा चखना या फिर मन के अंदर सोचना, चाहना, ये बस सीधे अनुभव से मिलते हैं।
ओके, और फिर इन सरल विचारों का क्या होता है? दिमाग इन्हें बस इकट्ठा करता रहता है?
नहीं नहीं, यहीं दिमाग की कारीगरी शुरू होती है। मन इन सरल विचारों को लेकर सक्रिय रूप से काम करता है, वो उन्हें जोड़ता है, उनकी तुलना करता है, उनमें से सामान्य गुणों को निकालकर अमूर्त विचार बनाता है। इस तरह बनते हैं जटिल विचार, कॉम्प्लेक्स आइडियाज।
जटिल विचार मतलब कैसे? कोई उदाहरण?
हाँ, लॉक इन्हें तीन तरह का बताते हैं। एक है मोड्स, ये वो विचार हैं जो अकेले नहीं रह सकते, किसी चीज पर निर्भर होते हैं, जैसे दर्जन भर केले। अब दर्जन का विचार केले पर निर्भर है, या बहादुरी, ये किसी व्यक्ति या काम का गुण है।
अच्छा।
दूसरे हैं पदार्थ, सब्सटेंसेस, यानी चीजों के विचार जिन्हें हम अपने आप में मौजूद मानते हैं, जैसे इंसान, पेड़, पानी। हम इन्हें कई सरल विचारों के संग्रह के रूप में सोचते हैं, जैसे पानी मतलब ठंडा, गीला, बेरंग वगैरह।
ठीक है, और तीसरे?
तीसरे हैं संबंध, रिलेशंस, जो विचारों की तुलना करने से बनते हैं, जैसे इससे बड़ा, उसका दोस्त, या कारण और प्रभाव, यानी वजह और असर।
समझ गई। इसी किताब में वो प्राथमिक और द्वितीयक गुणों का मशहूर फर्क भी बताते हैं। वो क्या था आसान शब्दों में? एक मिनट, मतलब ये जो आम का पीला रंग मुझे दिख रहा है वो आम में है ही नहीं? ये कैसे हो सकता है?
हाँ हाँ, ये समझना थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। लॉक कहते हैं कि प्राथमिक गुण, प्राइमरी क्वालिटीज, तो चीज में सचमुच होते हैं, चाहे हम उन्हें देखें या ना देखें।
जैसे?
जैसे किसी चीज का आकार, उसका वजन, वो कितनी जगह घेरती है, वो चल रही है या रुकी है। हमारा दिमाग इन गुणों को वैसा ही समझता है जैसे वो हैं।
ठीक है।
लेकिन द्वितीयक गुण, सेकेंडरी क्वालिटीज, जैसे रंग, गंध, स्वाद, आवाज, ये चीज में वैसे नहीं होते जैसे हमें महसूस होते हैं। ये असल में चीज के प्राथमिक गुणों की, जैसे उसकी सतह की बनावट की शक्ति होती है, जो हमारे दिमाग में एक खास तरह का अनुभव पैदा करती है।
शक्ति?
हाँ, तो आम का पीलापन आम के कणों की बनावट की वजह से है, जो हमारी आंखों पर पड़कर हमें पीले रंग का अनुभव कराते हैं। रंग हमारे दिमाग में पैदा होता है, आम में नहीं।
वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। मतलब हमारी पूरी दुनिया का अनुभव ही बदल गया।
बिल्कुल।
और पहचान का क्या? मैं आज भी वही हूँ जो मैं कल थी या 10 साल पहले थी, ये कैसे तय होता है? शरीर से, आत्मा से? लॉक क्या कहते हैं?
लॉक का जवाब यहाँ भी थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि हमारी पहचान न तो हमारे शरीर के लगातार बदलते रहने वाले कणों में है, न ही किसी अनुश्वर आत्मा में, जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ जान भी नहीं सकते।
तो फिर किसमें है?
हमारी व्यक्तिगत पहचान चेतना की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस पर टिकी है।
मतलब हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारी खुद के बारे में जागरूकता जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है, वही हमें हम बनाती है।
चेतना की निरंतरता यानी याददाश्त।
हाँ, काफी हद तक। लॉक के अनुसार अगर किसी की याददाश्त पूरी तरह चली जाए तो क्या वो वही व्यक्ति रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर वो सोचने को मजबूर करते हैं। ठीक है, तो विचार अनुभव से आते हैं, सरल और जटिल बनते हैं, और हमारी पहचान चेतना से जुड़ी है। पर इन विचारों को पकड़ेंगे कैसे, दूसरों को बताएंगे कैसे, यहीं पे भाषा का रोल आता है ना।
हाँ।
पुस्तक 3 इसी पर है, पर मैंने सुना है लॉक को इसमें भी एक पेच नजर आया।
बिल्कुल, पुस्तक 3 भाषा पर है। लॉक मानते थे कि भाषा सोचने और ज्ञान बांटने के लिए बेहद जरूरी है, पर वो ये भी मानते थे कि भाषा ही सबसे ज्यादा भ्रम और झगड़ों की जड़ है।
ऐसा क्यों?
उनका कहना था कि शब्द सीधे चीजों को नहीं दर्शाते, बल्कि हमारे दिमाग में उन चीजों के विचारों को दर्शाते हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ होती है सामान्य शब्दों से, जैसे कुर्सी, जानवर, न्याय। लॉक के मुताबिक दुनिया में कोई एक आदर्श कुर्सी या आदर्श न्याय जैसी चीज असल में नहीं होती।
तो फिर कुर्सी शब्द का मतलब क्या है? जब मैं कुर्सी कहती हूँ तो आप समझ तो जाते हैं।
हाँ, समझते हैं, क्योंकि ये शब्द हमारे बनाए हुए सामान्य विचार को दिखाता है। हम बहुत सारी अलग अलग कुर्सियां देखते हैं, उनमें जो मिलती जुलती बातें हैं, जैसे बैठने की जगह, टेक, पैर, उन्हें पहचानते हैं।
और जो फर्क है, रंग, साइज, मटेरियल, उन्हें नजरअंदाज करते हैं।
बिल्कुल, इस दिमागी प्रक्रिया को अमूर्तन कहते हैं। इससे हम कुर्सी का एक सामान्य खाका अब दिमाग में बना लेते हैं और फिर कुर्सी शब्द का इस्तेमाल उसी खाके के लिए करते हैं।
अच्छा,
और यहीं पर लॉक नाममात्र सार, यानी हमारी बनाई हुई परिभाषा या सामान्य विचार, और वास्तविक सार, यानी चीज की असली अंदरूनी बनावट जो उसके गुण तय करती है, का फर्क बताते हैं।
नाममात्र और वास्तविक सार।
हाँ, वो कहते हैं कि हम चीजों का वास्तविक सार शायद कभी नहीं जान सकते, जैसे सोने के अंदर असल में क्या है जो उसे पीला और भारी बनाता है, हम नहीं जानते। हम बस उसके गुणों को जानते हैं और सोना नाम दे देते हैं। भाषा का गलत इस्तेमाल, अस्पष्ट शब्द, एक ही शब्द के कई मतलब, शब्दों को ही असलियत समझ लेना, ये सब बेकार की बहसों को जन्म देता है।
ये तो आज भी कितना सच लगता है, खासकर ऑनलाइन बहसों में। एक ही शब्द के 100 मतलब निकाल लेते हैं लोग।
बिल्कुल।
और आखिर में पुस्तक 4 इन सब बातों को समेट कर ज्ञान की बात करती है। हम असल में क्या और कितना जान सकते हैं, क्या कुछ पक्का है भी या नहीं।
सही, पुस्तक 4 ज्ञान की प्रकृति, उसकी हद और भरोसे की बात करती है। लॉक के लिए ज्ञान का मतलब है अपने विचारों के बीच के संबंध को, सहमति या असहमति को देखना और समझना।
विचारों के बीच संबंध।
हाँ, और इसकी पक्की गारंटी की 3 डिग्रियां हैं। सबसे पक्की है अंतर्ज्ञान, जहां हम 2 विचारों का संबंध तुरंत बिना किसी शक के देख लेते हैं, जैसे हमें तुरंत पता है कि 3 2 से ज्यादा है या एक वृत्त चौकोर नहीं होता।
ठीक है, ये तो साफ है।
दूसरी है प्रदर्शनात्मक ज्ञान, जहां हमें निश्चित ज्ञान तर्क या सबूतों की एक कड़ी से मिलता है, जैसे गणित के प्रमेय साबित करना। लॉक ईश्वर के अस्तित्व को भी इसी तरह तर्क से साबित करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, और तीसरी?
तीसरी और सबसे कम पक्की डिग्री है संवेदनशील ज्ञान, जो हमें अपनी इंद्रियों से अभी मौजूद बाहरी चीजों के बारे में मिलती है। जैसे मुझे पता है कि मेरे सामने ये माइक है क्योंकि मैं इसे देख और छू सकता हूँ, पर यह ज्ञान उतना पक्का नहीं है। हो सकता है मैं सपना देख रहा हूं या कोई भ्रम हो।
तो फिर लॉक का अंतिम फैसला क्या था? क्या हम भरोसे के साथ कुछ जान सकते हैं या सब धुंधला ही है?
लॉक का नजरिया काफी विनम्र है। वो मानते हैं कि हमारा पक्का गारंटी वाला ज्ञान अंतर्ज्ञान और प्रदर्शन वाला बहुत सीमित है। हम खुद के होने को जान सकते हैं, गणित को, और शायद कुछ नैतिक सच्चाइयों को पक्के तौर पर जान सकते हैं, पर बाहरी दुनिया की चीजों के बारे में हमारा ज्ञान ज्यादातर संवेदनशील है, जो पूरी तरह निश्चित नहीं है।
तो फिर जिंदगी कैसे चलाएं?
इसीलिए जिंदगी के ज्यादातर मामलों में हमें पक्के ज्ञान के बजाय निर्णय, जजमेंट और संभावना, प्रोबेबिलिटी के सहारे चलना पड़ता है। हमें सबूतों को तौलना पड़ता है और जो बात सबसे ज्यादा तर्कसंगत लगे उसे मानना पड़ता है। आंख मूंदकर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर राय बनानी चाहिए।
तो इस पूरी गहरी बातचीत से कुछ बड़े सबक क्या निकलते हैं? पहला तो साफ है, अनुभववाद। ज्ञान का कच्चा माल हमारी इंद्रियों और मन के अनुभव से ही आता है, कुछ और नहीं।
हाँ, ये नींव है। दूसरा बड़ा सबक वो कोरी स्लेट वाला है। अगर दिमाग जन्म से खाली है तो इसका मतलब है कि शिक्षा और सही माहौल से किसी को भी सिखाया और सुधारा जा सकता है।
हाँ,
ये समाज में बराबरी और तरक्की की कितनी बड़ी उम्मीद जगाता है। सोचिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि समाज में जिसे हम पिछड़ा मानते हैं या कमजोर, वो जन्म से वैसा नहीं है। सही अनुभव मिले तो कोई भी आगे बढ़ सकता है।
बिल्कुल। और तीसरा, ज्ञान की सीमाओं को मानना। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, और जिस चीज़ को हम सच मानते हैं वो अक्सर पूरी तरह पक्का नहीं होता, बल्कि एक संभावना होती है। ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है ना?
हाँ, बहुत ज़रूरी है ये। चौथा, मन एक निष्क्रिय कैमरा नहीं है जो बस दुनिया की तस्वीरें लेता रहता है। ये एक सक्रिय कारीगर है जो अनुभव के कच्चे माल से समझ और ज्ञान का निर्माण करता है, जोड़कर, तुलना करके, अमूर्त बनाकर। हम ज्ञान रचते हैं।
और पांचवा, भाषा। ये दोधारी तलवार है। ये विचारों को व्यक्त करने का जरिया है, पर अगर हम सावधान न रहें तो ये हमें उलझा भी सकती है। शब्दों के सही मतलब पर ध्यान देना, परिभाषाएं साफ रखना, ये आज की बातचीत में कितना जरूरी है।
बिल्कुल, जैसे आजकल हम भारत में नई शिक्षा नीति यानी NEP में अनुभवात्मक सीखने, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देख रहे हैं। करके सीखना, अनुभव से सीखना, ये लॉक के विचारों से कितना मिलता है कि असली समझ रटने से नहीं, अनुभव से आती है।
हाँ, ये तो है।
और एक और बात, हमें अपने विश्वासों की जिम्मेदारी लेनी होगी। क्यों मानते हैं हम जो मानते हैं? क्या उसके पीछे कोई ठोस वजह है, कोई सबूत है, या बस किसी ने कह दिया इसलिए, या परंपरा है इसलिए? लॉक कहते हैं जांचो, परखो।
लॉक की कुछ कथन वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। वो सफेद कागज वाला तो है ही, बहुत मशहूर।
हाँ, वो कहते हैं, मान लो कि मन, जैसा कि हम कहते हैं, सफेद कागज है जिस पर कोई अक्षर नहीं, कोई विचार नहीं। ये भरता कैसे है? अनुभव से। ये एक लाइन में उनके पूरे दर्शन का सार है, निचोड़ है।
और ये भी, किसी भी इंसान का ज्ञान उसके अनुभव से आगे नहीं जा सकता। ये हमें हवा में उड़ने से रोकता है, यथार्थवादी बनाता है, जमीन पर रखता है।
समझ के बारे में उनकी ये बात भी गहरी है। समझ आंख की तरह खुद को नहीं देख पाती, उसे दूर रखकर अपना विषय बनाने के लिए कला और मेहनत की जरूरत होती है। मतलब अपने ही दिमाग को समझना कितना मुश्किल काम है, इसके लिए अलग से कोशिश करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है।
सही कहा। और तर्क पर उनका जोर, हर चीज में तर्क ही हमारा आखिरी जज और गाइड होना चाहिए। ज्ञान भले ही सीमित हो, पर फैसला लेने के लिए तर्क का इस्तेमाल ही सबसे सही रास्ता है। तो ये सदियों पुरानी बातें आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं?
क्या है इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस?
कई तरह से। शिक्षा में तो ये साफ है, रटने की बजाय करके सीखने, सवाल पूछने और खुद सोचने को बढ़ावा देना। बच्चों को सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि अनुभव देना जरूरी है, जिससे वो खुद समझ बना सकें। बातचीत में भी है ना, अगर हम याद रखें कि शब्द सिर्फ विचारों के लेबल हैं, तो हम ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और शायद पूछेंगे, अच्छा, आप जब ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका मतलब क्या है? दफ्तर की मीटिंग हो या घर का झगड़ा, कितनी गलत फहमियां कम हो सकती हैं।
बिल्कुल, और आज के फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में तो लॉक का संदेश रामबाण है। कोई भी खबर, कोई भी दावा, उसका स्रोत क्या है, सबूत क्या है, क्या ये मेरी अपनी सोच से मेल खाता है इसलिए मैं मान रहा हूँ, या वाकई उसमें दम है? लॉक हमें सबूतों के आधार पर विश्वास करने की सीख देते हैं। क्वेश्चन एवरीथिंग।
हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और ये समझ के अलग अलग लोगों के अनुभव अलग होते हैं, इसलिए उनके विचार भी अलग हो सकते हैं। इससे दूसरों के प्रति थोड़ी सहनशीलता बढ़ती है, गुस्सा कम आता है शायद।
हाँ बिल्कुल, और जो लॉक ने परावर्तन कहा, यानी अपने मन के अंदर झांकना, वो तो आजकल जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं उससे कितना मिलता जुलता है। खुद को समझना, अपनी भावनाओं, अपनी सोच के पैटर्न को देखना, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है।
मेरे लिए इस चर्चा से सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि हम ज्ञान के सिर्फ ग्राहक नहीं हैं, बल्कि निर्माता भी हैं। अनुभव हमें कच्चा माल देता है, पर उसे ज्ञान में बदलना हमारे दिमाग का काम है। ये सोच हमें ताकत देती है कि हम अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं, एक्टिवली।
और मेरे लिए ज्ञान की सीमाओं को खुशी खुशी स्वीकार करना, ये जानने में एक तरह की शांति है कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं है और ना ही संभव है। इससे हम दूसरों की सुनने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए ज़्यादा खुले रहते हैं। और हाँ, भाषा को लेकर उनकी चेतावनी कि शब्द असलियत नहीं होते, आज डिजिटल दुनिया में पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है, जहाँ शब्दों से ही पूरी दुनिया बन और बिगड़ रही है।
श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। अगर हमारा सारा ज्ञान अनुभव से ही आता है, तो क्या वास्तव में कुछ नया, मौलिक, रचनात्मकता जैसी कोई चीज है, या ये केवल हमारे मौजूदा अनुभवों का एक चतुर पुनर्संयोजन मात्र है? सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।